वो सोचने लगती हैं कि कब श्रावण महीना आए तो हम अपने पिता के घर में जाएंगी और वहाँ स्वच्छंद रूप में झूले में झूलेंगी और कृष्ण से स्वच्छंद रूप में मिलेंगी। इसलिए एक दो महीना पहले से ही श्रावण महीने की प्रतीक्षा होने लगती है, विशेष करके जावट में जितनी सखियां हैं सब एकत्रित होती हैं और सभी सोचते हैं कि अब पिताजी हमें बुलाएंगे, मैया बुलाएंगे। श्रीमती राधिका जी भी एक महीने पहले से ही ब्रज की तरफ में देखती हैं, हमें कोई आज तक कभी बुलाने के लिए नहीं आया, प्रतीक्षा कर दिन पर दिन बीतते जाते हैं, उत्कंठा उनकी बढ़ती जाती है। जब श्रावण महीना आने लग गया दो एक दिन तो उत्कंठा अत्यधिक उत्कंठा बढ़ गई और तो उत्कंठा बढ़ने से दो एक दिन पहले ही केवल देखती हैं घर के बाहर और भीतर कि भैया मुझे बुलाने के लिए आ रहा क्यों, भैया तो नहीं दिख पड़ा, उनका कोई गांव का बंजारा दिख पड़ा। बंजारा की लीलाएं श्रावण महीना आते ही रात में ये सब दिखाया जाता है, दिखलाते हैं, सबको रुला देते हैं, ऐसी बंजारा की लीलाएं होती हैं। बंजारा किसको कहते हैं? बन जा है? उसमें रा पीछे से लगा दिया गया अर्थात उनका कोई घर द्वार नहीं है, ये मतलब उनका कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, किंतु स्त्री पत्नी बेटा बेटी पूरा परिवार है और उनका घर टेंट है, गाड़ियों में बैठकर आज यहाँ कल वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, किंतु वो घूम फिर करके बरसाना में आ जाते हैं। हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले बंजारा को गोवर्धन में देखा, अभी भी हैं, अब तो वो बस गए, कुछ बहुत कुछ व्यवस्था कर दी गई, नहीं तो पहले बंजारों का चलता था, देश विदेश में वो घूमते फिरते रहते थे। तो उन्हें का गांव का परिचित कोई बंजारा दिख पड़ा, बस देखते ही और वो रोने लगी और उसे बुलाया और बातचीत करने लगी। बंजारे तुम कहाँ से आ रहे हो? तो बरसाना से। तुम बंजार कब लौटेगा बरसाने में? तो जब कहेगी तुम भी मैं लौट जाऊंगा, तो तुम कल ही लौट जाओ। और वहां लौट करके मेरे पिताजी से मिलना, मेरी मैया से मिलना, मेरे भैया से मिलना। उन्हें कहना कि आप अपनी बेटी को भूल गए, मैं महीनों से प्रतीक्षा कर रही हूं, यह श्रावण का महीना आएगा, करते करते बड़ी उत्कंठा से करते करते श्रावण महीना और अभी तक हमको बुलाया नहीं गया, मालूम होता है हमको सभी लोग भूल गए। और ये कह करके रोने लग गए। बंजारा भी उनकी यह दशा देख करके वो भी रोने लगा। परस्पर जो बातें हुई, मैं जाने कितनी कितनी बातें पूछ रही, पिताजी कभी हमको याद नहीं करते, मैया भी भूल गई, एक भैया था वो भी भूल गई, मेरी एक छोटी बहन है तो वो भी मुझको याद नहीं करती। बंजारा बोला कि मैं अभी लौट करके जाऊंगा, अब तुम्हारे पिताजी को मैं कह दूंगा। वहां जाकर के राधिका जी की स्थिति वो वर्णन करता है। ऐसे ही समझना, जितनी सखियां हैं, विशाखा जी की शादी भी वहीं पर है, अनंग मंजरी की शादी भी वहीं पर है, ऊंचा गांव की ललिता जी हैं उनकी भी शादी पास में ही है, गोवर्धन नामक एक वाले से उनकी शादी हुई थी, चंद्रावली सी थी, गोवर्धन बड़ा भारी मल्ल था और कंस का वो प्रधान मल्ल था। तो इसी तरह से जितनी भी गोपियां थी, राधा जी की विशेष करके सहेलियां आठ, विभिन्न जगहों से इनकी यही जावट में या आसपास में ही शादियां हुई, अनंग मंजरी, रति मंजरी और अवसर, रूप मंजरी, ये सब उधर ही आसपास में शादी, वृंदा जी की शादी इस वृंदावन में हुई थी, ये वृंदावन की निवासिनी है और वृंदावन की अधिकारिणी देवी हैं, यही इस वृंदावन को सुरक्षित करके और बड़ी सुंदर बनाती हैं। पशु पक्षी कीट पतंग जितने सब इनके अधीन रहते हैं, जैसे जिसको अधिकार देती हैं, जिसको जैसा कहती हैं परिचालित करती हैं, ऐसा ही वो सब लोग कृष्ण के लीला के उपयोगी सब वृंदावन को सजा रखा। उन्होंने इस राज्य को श्रीमती राधिका जी को दे करके और उसे वृंदावनेश्वरी उनको ये उपाधि दिया है। सब सहेलियां मिलती हैं वहां। पहले तो कृष्ण की लीला हुई गोकुल की, गोकुल के बाद में 3.5 वर्ष के बाद में कृष्ण छठी करा आ गए और 3.5 वर्ष के होंगे तो राधा जी कितनी वर्ष की होंगी, 15 दिन छोटी, और भी सहेलियां जैसे ललिता जी हैं 27 दिन बड़ी, विशाखा जी उनके बराबर की उम्र वाली, इसी तरह से सब सखियां उस समय में छोटी छोटी रहती, उस समय में कोई भी संपर्क नहीं। वृंदावन में आने के बाद में ये कुछ बड़ी चलनी फिरने वाली ये सब हो गई, कृष्ण भी बछड़ों को चराने लग गए, तब परस्पर में मिलन हुआ। इसके बाद में घूमते घूमते राधा कुंड इत्यादि से होकर के दीक में गए, वहां से फिर कुछ दिनों के बाद में चले गए काम्यवन में। काम्यवन में कृष्ण की मैया की पिताजी का घर है। इसके बाद में वहां से और कुछ बड़े हो जाते हैं तो फिर खेलन वन में जाते हैं। खेलन वन तक में राधा जी पौगंड अवस्था को पार कर लेती हैं, कृष्ण भी पौगंड अवस्था को पार कर लेते हैं, इसलिए उसका नाम खेलन वन पड़ा। खेलन वन माने क्या, राधा और कृष्ण के खेलने का वो वन है। इसके बाद में कृष्ण आ जाते हैं नंदगांव में और श्रीमती जी बरसाने में आ जाते हैं। उस समय में ये लोग किशोर किशोरी हो जाती हैं। उसी के बाद में यहाँ पर वहीं से आकर के यहाँ पर भी रासलीलाएं होती हैं और जहाँ तहाँ वृंदावन में भंडी वन में ये सब होती है। तो ये महीना खास करके झूलन का है। झूलन माने क्या, झूलना। कृष्ण की बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जिसमें रास को बतलाया गया है, उसमें सभी लीलाएं हैं। कितनी प्रकार की लीलाएं हैं, वो सभी रास में सम्मिलित है। रास एक दो दिन की लीला नहीं, बल्कि ये लीला कितने दिन की है? ब्रह्मा के एक पूरी रात की लीला है, जिसमें हजारों लाखों रातें उसमें समा सकती हैं। इस यहाँ की हजारों लाखों इसमें करोड़ों रातें इसमें आ जाएगी। इसी से देख लो, 432,000 वर्ष का कलयुग, इसका डबल द्वापर तिगुना त्रेता चतुर्गुण, और ये सबको मिलाकर के जितना होगा वो संधि का स्थान, सब मिलाकर के 4,32,00,000 वर्ष का एक दिन और इतने का ही हो गया रात। ये दोनों को मिलाकर के 365 से गुणा कर दो और इससे 100 से गुणा कर, ब्रह्मा की आयु
3,000
ब्रह्मा जी की आयु,
एक दिन
में इतना हुआ। उतने दिन की रात हुई और इतना दिन तक ऐसा हुआ कि फल भर लगते हुए गोपियों ने देखा यह रात काली में कहाँ चली गई, किंतु उसमें सब प्रकार की लीलाएं हुई। होने पर भी श्रावण का महीना विशेष महत्व रखता है, विशेष ये महत्व रखता है। कृष्ण जी जरा राधा जी कुछ बाम्य भाव की हैं, मधु स्नेह से युक्त हैं। बाम्य भाव माने मदीय भाव, कृष्ण मेरे हैं। भक्ति का विचार, रस का विचार कृष्ण के तरफ से नहीं होता, भक्तों के तरफ से होता है। भक्ति का विचार कृष्ण रसमय है ये कौन कहता है? कृष्ण कहते हैं न कि भक्त लोग कहते हैं, उनके परिकर कहते हैं। इसलिए जहां भी भक्ति का विचार है, उत्तमा भक्ति का विचार है, साधन भक्ति का विचार है, और उसके बाद में प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि का है, ये कृष्ण का वर्णन नहीं है। किसका वर्णन है? गोपी ब्रजवासियों का ये वर्णन है। कृष्ण में भी है, कृष्ण में नहीं है ये बात नहीं, किंतु विचार होता है भक्तों का। प्रेम कृष्ण में है, किंतु कृष्ण का प्रेम ऐसा है एक कांच के समान है, उसके पास में कोई भी फूल रख दो उसी का रंग ले लेता है, सफेद हो, हरा हो, नीला हो, लाल हो, काला हो, वो उसका ले लेगा रंग। जैसे ब्रजवासी लोग हैं माता पिता के भाव वाले, सखा के भाव वाले, पुत्र के भाव वाले, गोपियों के भाव वाले। गोपियां भी कितने प्रकार की हैं, एक दो प्रकार की नहीं, मुख्य रूप से ही 360 प्रकार की गोपियां हैं, और उनके एक एक के सब जूथ हैं। जूथों में फिर गण हैं, गण में भी और कितने विभाग हैं, अनंत कोटि कोटि गोपी हैं, एक दो प्रकार के नहीं, और वो सब एक एक भाव हैं, और वो सब भाव आठों में मिलते हैं, और इन आठों में जो मिलता है उससे भी कुछ अधिक श्रीमती राधिका में। तो इसलिए इनका विचार होता है भक्ति राज्य में जो प्रेम कैसा है, कृष्ण का विचार नहीं होता, कृष्ण का इनके अनुरूप हो जाएगा, जैसा उनका रहेगा भक्तों का ऐसा ही होगा। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा ही भजामि। इसलिए रात में समस्त लीलाएं होती हैं, उसमें दोला भी है, बंसी चोरी है, जितने मिलन का है और विरह का भी, कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं वो विरह का हो जाता है, इसलिए सभी उसमें है। किंतु श्रावण महीने का एक अपना वैशिष्ट्य, वो वैशिष्ट्य क्या, कृष्ण गोपियों के साथ में, कृष्ण राधा जी के साथ में जो मिलना चाहते हैं, राधा जी में मदीय भाव होने के कारण और मधु स्नेह होने के कारण उनका प्रेम कुछ बाम्य भाव होता है। जहाँ ऊपर में हम लोगों ने आज सेवा कुंज में हम लोगों ने वो किया, श्री विग्रह को प्रकाश किया। राधा जी कभी भी कृष्ण के सामने मिलने के लिए उत्सुक हैं, बहुत उत्कंठित हैं, किंतु कृष्ण को जहाँ देख लिया ये कृष्ण मेरे लिए प्रतीक्षा के पास वहीं से लौट जाएंगे, मान कुछ कर लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। प्रेम का स्वाभाविक यही वक्र भाव है, विशेष करके मधु स्नेह में, मदीय भाव में ऐसा हो। कृष्ण जाएंगे कहां, वो तो मेरे हैं, 10 बार मनाएंगे। इसलिए सब समय जहां भी देखा जाता है हमारे गोसाई ग्रंथों में, या निकट आई और बस लौट जाती हैं, मिलती नहीं। श्रावण का महीना ऐसा है जो नहीं चाहने पर भी, मैंने चाहते हैं अंदर से, बाहर से नहीं चाहते, यही माधुर्य है। किंतु श्रावण का एक महीना ऐसा है जिसमें कृष्ण एक वर्ष तक जो प्रतीक्षा करते हैं, जो बात नहीं होती, ऐसे स्वच्छंद तरीके से और बड़े प्रेम से वो मिल जाती है। कैसे मिलती हैं? श्रावण का महीना आया, झूला लग गया, पर विश्वानु महाराज ने अपनी प्यारी बेटी को बुलाया। कैसे बुलाया? श्री राम जी बुलाने के लिए गए। श्री राम जी राधा जी से बड़े हैं, काफी बड़े हैं, कृष्ण से भी ये बड़े हैं, करीब करीब उनके उनसे 2-4-10 दिन बड़े हैं या और कुछ बड़े हैं, बलदेव प्रभु जी के करीब करीब, और कृष्ण के बड़े प्यारे हैं। उनसे छोटी हैं श्रीमती राधिका और उनसे भी वर्ष एक अनंग मंजरी जी छोटी हैं। सुबह उन्होंने सिद्धांत को भेजा, जाओ अपनी बहन को ले आओ। सिद्धांत जी मिठाइयों का वो पहले हंडे टंडे चलते थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन है ना, उनमें खाजा और क्या क्या, फेनी और क्या, घेवर, बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयां बनती थी, और उसमें रख करके बांकी पर कंधे पर लेकर के आदमी उनके साथ में चलते थे। उसमें बेटी के लिए कपड़े और सब गहने इत्यादि सब भेजे जाते थे, सब मिठाइयों के साथ में, गणो अलंकारों के साथ में। सुमल जी जा रहे हैं किंतु सोच रहे हैं आज विलंब हो गया है हम लोगों को वहां जाने में लाने, न जाने कितनी ओलहाना देगी रोएगी। वो प्रतीक्षा कर रही हैं, जब ये गए तो भैया का पैर पकड़ करके रोने लगी, भैया भैया, और रोते रोते बोली, गला पकड़ लिया ऐसे, भैया तुम लोग हमको भूल गए, पिताजी भी हमको विसार गए, मैया भी हमें विसार गए, कोई भी मुझे याद नहीं कर, मैं कितने दिन से प्रतीक्षा करती हूँ। सुबल भी रोने लगे, सुदाम भी रोने लगे, ये भी रोने लगी। फिर उनको शांत कराया, बोलिए अभी तुम तैयार हो जाओ, अभी तुमको हम लेने के लिए आए हैं, उनको भी लेकर। फिर उनको बैलगाड़ी गई थी, बैलगाड़ी मैंने गाड़ा नहीं, उसमें 2 बैल बड़े सुंदर सुंदर मखमल उनको लगाए जाते हैं, सोने की सिंह लगा दी जाती है, पैरों में खूब, गले में चांदी की झालर, और उनके
हल्दा
तो ये हल्दी छाप दे करके उसमें दे देते हैं। बड़े सुंदर सुकाम विश्वभान महाराज के घोड़े, घोड़ों से भी अधिक, और उनमें गाड़ी केवल दो एक आदमी बैठ सकता है। बड़े गलीचे और क्या क्या सब दे करके वो रहते हैं। अभी भी बड़े बड़े रईस जो होते हैं ब्रजवासी, उनके घरों में रहती वो गाड़ियाँ। केवल वो लड़कियों को लाने या कहीं अपने आराम से जाने के लिए होती हैं, बस उस पर बैठा करके और उनको ले आए। बड़ी मुश्किल से ले आए, जटिला नहीं जाने देगी, किंतु उसे भाषण करके और ले आए। आने के गांव के पहले से ही रोने लग गई। सब लोग जितने लोग थे सुना, जैसे लाली आ रही है। विश्वभानु महाराज भी लालू को अगवानी करने के लिए एकदम आगे आ गए, और गांव के जितने भी लोग हैं सब की लाली है, महिलाएं भी, वो सब लोग उनके लिए आ गए। इसके बाद में दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई, उसको उतार करके घर में ले गए, सबसे मिली जुली। इसके बाद में अपने सहेलियों से भी मिली, सहेलियां भी अपने अपने से पिताजी के घर में आकर के और वहां से स्वच्छंद रूप से मिली। इसके बाद में ऐसा ही रोज झूले पर झूलती हैं, सखियां मिलकर कहीं अपने सखी को झुलाती हैं। कृष्ण का वहां आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई संबंध तो है नहीं उनसे। जे उनके घर के जमाई हैं, जमाई करने की बड़ी इच्छा थी, ये कृष्ण हमारे जमाई हो जाए। वो क्या होती है ना, विवाह करने के पहले सगाई भी हो गई थी, सगाई भी होने को गई थी, सब कुछ हो गया, किंतु जोग माया ने सब बिगाड़ दिया, करने नहीं दिया। सब लोग चाहते, जसोदा जी चाहती हैं, जसोदा जी ने तो राधा जी के हाथ पीले भी कर दिए थे, प्राय हो ही गया था सब कुछ, सोच रहे जी हमारी बहू होकर के आएगी, किंतु यह बात नहीं हुई। जोग माया ने किसी कारण से, वो विशेष कारण जो कि रुक्मिणी सत्यभामा से भी इनके अधिक प्रेम इनका है, उस पार्थिव भाव को के कारण उन्होंने ये करना नहीं दिया। जोग माया ने ऐसा दिखलाया, विवाह किसी के साथ में नहीं हुआ, कृष्ण के साथ नहीं हुआ, किंतु सबने सोचा देखा ये दूसरे से हो रहा है। राधा जी की शादी हो रही है जावट में अभिमन्यु, चंद्रावली की शादी हो रही है उस समय में, ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो रही है, किंतु किसी के साथ में जोग माया ने शादी नहीं करने दी। उन लोगों ने देखा भी नहीं, किंतु उन लोगों ने ये समझा कि हमारी इनकी साथ में हमारी शादी हुई है। और जोग माया ने इन गोपियों के भी भाव में ये लाद दिया, कृष्ण यद्यपि हमारे प्राण प्रियतम है, किंतु आज हमारी समाज के वजह से हमारी शादी इनके साथ में, और उन लोगों ने समझा हमारी शादी इनके साथ, किंतु उन गोपियों के साथ में अपने पतियों का कभी भी जीवन भर कोई भेंट ही नहीं हुई, कभी भी भेंट नहीं हुई, ऐसा समस्त शास्त्रों में प्रमाण है। विशेष करके इन गोपियों की शादी कृष्ण से हुई, इसके भी कुछ कुछ प्रमाण है, नहीं तो मर्यादा रखने वाले लोग जिनको भक्ति नहीं है वो लोग कुछ कहेंगे, इसलिए उनके लिए मौका नहीं दिया। जोग माया ने दो बार उनकी शादी कराई कृष्ण से। पहली बात तो हुई जबकि कृष्ण छोटे से अभी थे, नंद बाबा उनको गोदी में लेकर के जा रहे थे, वर्षा हो रही थी, काली मेघ चारों तरफ में, काले काले मेघ थे, सघन कुंजों में गोचारण को देखने के लिए जा रहे थे नंद बाबा। और उसी समय में जब बेग थोड़ा 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 थोड़ा, जबकि वर्षा होने लगी, तब अंधकार एक तो बन और उसमें भी घना मेघ और भी काला हो गया, पथ नहीं सूझता था। उस समय में भांडीर बन के निकट गए नंद बाबा, और उतने में देखा एक कोई छोटी सी किशोरी आई। अरे देखा ये तो बरसाने की हमारे मित्र की लड़की है, और देखते देखते उनके हाथों से ऐसे किया, कृष्ण उनके हाथों में चले गए। नंद बाबा देखते रहे, वो आगे बढ़ी, आगे जाने पर स्वयं किशोरी बन गई, कृष्ण भी किशोर बन गए, उनको उतार दिया। और फिर वही भांडीर बन में बट के नीचे, इतने में ब्रह्मा जी आ गए, सब सखियां वहां पर आ गईं, और आकर के वहीं पर ब्रह्मा जी ने वेद विधि के साथ में उनका विवाह कराया, गांधर्व विवाह हुआ, किंतु वेद मंत्रों के साथ नहीं, ये तो राधा जी के साथ में। और जिस समय में ब्रह्मा जी बछड़ों को हर करके ले गए और सखाओं को हरण किया, कंधे में ला दिया, उस समय एक बरस तक कृष्ण ही बन गए, जितने बछड़े और बन गए सखा। और उस समय में कौन ऋषि, गर्गाचार्य ने ऐलान कर दिया, जितनी गोपियां हैं वो सब गोपियों की शादी कर दी जाए, लड़कियों की, कन्याओं की, सबको शादी, कुमारी कोई न रहने पाए। इस वर्ष अच्छा योग है, जिस लड़की की शादी हो जाएगी उसका पति अजर अमर रहेगा, वो कभी विधवा नहीं होगी, और सब प्रकार का उसका सुहाग बना रहेगा, पति भी उसके वशीभूत रहेंगे, और समृद्धि सब प्रकार की लौकिक पारमार्थिक सब समृद्धि रहेगी। इसलिए इस वर्ष सबकी शादी कर देना। इसलिए गर्गाचार्य के उपदेश से जो गर्भ में लड़के और लड़कियां थी भी उनको भी कर दिया गया, होने के बाद में हम लोग इसकी सगाई आज कर रहे हैं, पीछे शादी। इस तरह से जितने भी लड़कियां कुआरी थी ब्रज में उस वर्ष सबकी शादी हुई। इसलिए वो शादियां किसके साथ में हुई, कृष्ण बने हुए हैं ना, छोटे बड़े गोपाल बने हुए हैं, किशोर भी हैं उनमें, सखा जो जितने थे, चार प्रकार के सखा हैं। कुछ सखा जो सुहृद होते हैं कृष्ण से, उम्र में बड़े होते हैं एक दो वर्ष, और कुछ सखा होते हैं वो कृष्ण से एकदम छोटे होते हैं, वो दास्य भाव युक्त होते हैं, वो कृष्ण से काफी उम्र में छोटे होते हैं, वो 5 से लेकर के 8, 9, 10, 11 वर्ष के हो सकते हैं, कृष्ण को यदि मान लिया 12 वर्ष के या 15 वर्ष के हैं। और कुछ सखा होते हैं जो अत्यंत प्रिय हैं, श्रीदाम इत्यादि उनके समवयस्क होते हैं, और बीच में और भी सखा तरह तरह के होते हैं, तो छोटे से लेकर के बड़े तक उसमें सब प्रकार के सखा हैं। इसलिए जितनी वहां पर ब्रज में गोपियां थीं, कुंवारी लड़कियां, सबकी शादी उस समय में कर दी गई। इसलिए ये शादियां सब अनायासी कृष्ण के साथ में संपन्न हो गई। किंतु वो लोग समझ रही हैं ये हुआ है उन सखाओं के साथ में, किंतु हुई कृष्ण के साथ। यही पार्थिव भाव का सूचक है, यदि ऐसा योग माया नहीं कराती तो पार्थिव भाव गोपियों का नहीं। इसीलिए उस समय में उनके साथ भी, अभिमन्यु इत्यादि के साथ में भी जो शादी हुई, वो एक तरह से कृष्ण ही थे, ऐसा समझ, कृष्ण के ही वो प्रकाश हैं, तो भी उन लोगों के साथ में इनकी शादी हुई। इसके बाद में अब ये झूलन का फिर प्रसंग ले आते हैं। अब झूला कुछ दिनों के बाद में, एक महीने का झूलन, कृष्ण ने सोचा ये कैसे मिले, इसलिए उन्होंने भी एक सखी का रूप बना करके और उस झूले में बरसाने में झूला लग रहा है, या राधा कुंड में स्वच्छंद रूप से झूला लगेगा इस महीने में, वहां पर दो पर में बसंत ऋतु सब समय छाई रहती है और वर्षा का भी काल होता है, उसमें वो मिलन होता है, वहाँ पर उनको झुलाती हैं। बरसाने में भी यदि झूलेंगे तो इसी प्रकार से वेश बदल करके, यहाँ पर वेश नहीं बदलना है,
राधा कुंड
में, इसलिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है, वहाँ पर वेश बदल करके जाते हैं, झूला झुलाती हैं सखियाँ, परस्पर सखियाँ बैठती हैं। अब ये कृष्ण जो वेश बना करके आए हैं, सबने कहा ये बड़ी अच्छी सखी है, और उसको उनके साथ में बैठा दिया, राधा जी के साथ। झूला जब चलने लगा, आठों सखियां मिलकर के चार चार करके झूला रही हैं, बाजे भी बज रहे हैं, पखावर, सारंगी, मृदंग, करताल, बीना, झांझ, तरह तरह के सब वाद्य, सबका सम स्वर से वो बज रहे हैं। अद्भुत समा बध गई, समा बधना होता है ना, समा बध गई, समा समा मन होता है वो जो मृदंग है ना उसको ठीक कर लेंगे एसराज के तार पर, सब बाजा जितने हैं ना एक साथ में एक स्वर से। अच्छा ये स्वर साधे जाएंगे, जो कीर्तन करने वाला है संगीत उसके गले से साधा जाएगा, तो वो पंचम और सप्तम स्वर में ये सब साथ है। इसके साथ में तरह तरह से सुंदर संगीत आरंभ हो गया। वो सखी उनके साथ में बैठ गई राधा जी के साथ में, और सखियां झुलाने लगी मल्हार राग, मल्हार राग माने जिसके गाने से वर्षा मेघ एकदम झरने लगता है धीरे धीरे, मल्ला फुहरे पड़ रहे हैं। अब वो सखी सखियों को जरा इशारे से हटा दिया, और वो बैलेंस साध करके बिना हाथ से पकड़े हुए रस्सी, ऐसा बैलेंस होता है जैसे नट होते हैं ना, पतली रेखा पर या तार पर भी चल लेते हैं साध करके, ऐसे उन्होंने साध करके अब छोड़ करके और एकदम जोर से बैलेंस से ऊपर नीचे कर, जितना ही झूला ऊपर और नीचे जाने लग गया वो तो चिल्लाने लग गई, डरने लगी, उनके वस्त्र भी उड़ने लगे, अंचल उड़ने लगा, हाथ से पकड़ने का अब समय रहा नहीं, इन दोनों हाथों से कृष्ण को पकड़ लिया, कपड़े भी उड़ रहे हैं और संभालना मुश्किल हुआ, चिल्ला भी रही हैं। जो कृष्ण का मिलन और आलिंगन कृष्ण के लिए बड़ा भारी दुष्कर कार्य था, सब समय मान करती थी, मिलती नहीं, आज अनायास ही कृष्ण को ये झूला का मूल तात्पर्य, वहां उनका मान तान सब खत्म हो जाता है, इसलिए ये प्रधान रूप में मिलने और कृष्ण को प्रसन्न करना, या कृष्ण उसके माध्यम से राधा जी को प्रसन्न करते हैं, ये झूलन का तात्पर्य है। जब तक हृदय में ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी, कैसी मदीय का भाव, अंततः इसका भी भाव आना चाहिए, पहले साधन करते 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 प्रारंभिक स्थिति में ही गुरुकरण करते समय जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है, जिसका पूर्व जन्म का संस्कार है, कुछ साधन भजन किया है, और जो इस जन्म में साधु संघ अभी पहली बार मिला, इन दोनों में कोई वैशिष्ट्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना, पूर्व जन्म में उसको संस्कार हुआ, भजन करता रहा, हरिनाम करता रहा, हरि कथा सुन रहा है, और काफी उसके अनर्थ भी दूर हो गए हैं, और किसी किसी को तो ऐसा भी हो सकता है उनको निष्ठा हो गया हो, किसी को रुचि हो गई हो, किसी की आसक्ति हो गई है, किसी को भाव अवस्था आने आने को है, किसी को भाव भी हो गया होगा, तरह तरह के अधिकारी लोग अपना जन्म लेकर के भजन करते हैं, पूर्व जन्म का जिसका संस्कार है किंतु छोटी उम्र है, और किसी का इस जन्म में ही केवल अभी आरंभ हुआ है संस्कार किंतु उम्र में बड़ा है, वहां पर क्या विचार होगा, ये सब विचार परमार्थिक में छोटे बड़े उम्र का और ये सब विद्या का ये सब का नहीं होता, संभव पर नहीं है। भले ही वो उन्नत कोटि का जो जिसका संस्कार है उम्र वाले को सम्मान दें वो बात तो दूसरी है, किंतु हो सकता है उम्र से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ये पूर्व पूर्व जन्मों के साधन के संस्कार पर सब कुछ निर्भर करता है। किसका संस्कार कैसा होगा, किसका संस्कार कैसा होगा। ये जन्म में जिसको केवल साधु संग मिला है और अनंत भरे पड़े हैं वो दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने के बाद में तब भजन करते करते कुछ कुछ संस्कार आते हैं, और जिसका पूर्व जन्म का संस्कार है वैसा उसको दीक्षा लेने के पहले ही वो संस्कार हो जाता है और वो ऐसे गुरु के पास ही जाएगा। अब जो दीक्षा होगी जो कि परम रसिक तत्वज्ञ उच्च कोटि का उत्तम भक्त होगा, ऐसे वाले संस्कार वाले। और जिनका संस्कार नहीं है उसको अभी कोई क्षमता विचार करने की नहीं है, वो कहाँ जाएगा। जैसा उसका संस्कार होगा वो भगवान की कृपा से, यदि ये नहीं हुआ सिंसियर यदि नहीं हुआ तो वो जैसे तैसे गुरु के पास में चला जाएगा, भटक जाएगा। और जिसका संस्कार है वो नहीं भटकेगा, अब तो उसका कुछ संस्कार है और वो ऐसे गुरु के पास में जाएगा जो सब कुछ श्रीमद भागवत के रसिक है, गोसाई ग्रंथों के रसिक है, बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं, उनके पास में जाकर के सरल रूप में सहज समझ लेगा। और किसी को जो अभी इस जन्म का जिनका संस्कार है उनके समझ में कुछ नहीं आएगा, देखता है यार वो सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, छोटे छोटे आदमी, ये सब विचार करने लगे और इनमें ही धर्म में रुचि है। भागवत के ये श्लोकों को ऐसे ऐसे दशम स्कंद के और ये सब पढ़ते हैं सुनते हैं और इसमें रुचि है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको बैन लगाना चाहते, क्योंकि उनका ऐसा संस्कार नहीं है। किंतु उन लोगों का जिनका संस्कार है वो क्या करेंगे, उनका दीक्षा के पहले से ही उनका ऐसा है, इधर में उनकी रुचि है, इधर में भजन की वासना है, इसलिए वो ऐसे गुरु के पास में जाकर के कुछ अधिक उन्नत धरण की कथा सुन करके और उधर ही चलेंगे। इसलिए उस समय में उनके संस्कार वस्तुतः और इनका जिनका भी संस्कार नहीं है ये श्रद्धा दो प्रकार की हो गई ना। अब पहला वाला जिसका संस्कार है वो कैसे जाएंगे, तो रागानुगा की परफ में उनकी श्रद्धा होगी, उसमें तो मालूम साधारण लोगों को नहीं होगी, किंतु जो इस विषय का जो गुरु होगा यह रघुनाथ दास गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी वो प्रारंभ से कहते हैं। और लोग जो हैं उनका कैसा संस्कार है, ब्रह्मा जी को ही देख लो हरिदास ठाकुर के रूप में या प्रहलाद महाराज जी को, अनर्थ नहीं है, सब कुछ ठीक है, किंतु इस विषय का संस्कार नहीं। संस्कार हो भी सकता है किंतु ऐसा आप कहीं देखने में चैतन्य चैतामृत इत्यादि में नहीं मिलता, किंतु रूप गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का और जो भक्त लोग हैं महाप्रभु के जितने भी वैसे परिकर हैं सबका संस्कार। द्वादश गोपाल नित्यानंद प्रभु जी के जो सखा लोग हैं उनका सख्य भाव में उनका देखा जाता है। इस तरह से भजन करते समय में ऐसे जिनके दो प्रकार के श्रद्धाएं हैं, दो प्रकार की, एक तो चली रागानुगा की तरफ में और एक चली वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति वाला विचार करके चलेगा ये क्या ठीक है नहीं ठीक, उनको कुछ विचार नहीं करना है, वो आंख बंद करके सीधे चलते हैं कोई कि जो कुछ कहे। और इनका शास्त्र सम्मत मर्यादा संपन्न क्या चीज अच्छी है नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं करना, ये विचार करके वैदिक भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। इसी प्रकार से उनकी निष्ठा और इनकी निष्ठा दोनों की हुई, किंतु निष्ठा भी एक तरह की नहीं होगी। निष्ठा से जो रुचि होगी उनकी रुचि और इनकी रुचि एक नहीं होगी, अलग अलग चलेगी। और इसके बाद में रुचि के बाद में आसक्ति भी दूसरे तरह की होगी। आसक्ति के समय में ही वो आराध्य का भाव ठीक हो जाता है। भक्ति माने भजनीय और भजन, आसक्ति दो प्रकार की हुई, पहले होगी भजन में और इसके बाद में होगा भजनीय में। भजनीय माने क्या? भजनीय माने दो, कृष्ण और उनके परिकर, ये दोनों हमारे लिए भजनीय हैं, जिनके भाव से हमें लोभ है वो उनके परिकर और कृष्ण, ये दोनों भजनीय हैं। वहीं पर ठीक हो जाएगा आसक्ति के समय में, जब अनर्थ करीब करीब थोड़ा सा दूर हो जाएगा, उस समय में हमारे शुद्ध मन की भावनाएं आत्मा से प्रतिफलित उस पर होती हैं, उस समय में ये ठीक होता है। उस समय में भजन आरंभ ठीक से हो जाता है और साथ साथ में भजनीय भी ठीक हो जाता है। अब दोनों का संबंध होकर के भाव हुआ, ऊपर से परिकरों का भाव उसके अंदर, यह भाव उनका भी होगा वैदिक भक्ति वालों का, उनका वैकेंठीय भक्ति आएगा विधि मर्यादा वाला, और उसमें अधिकांश रूप में दो भाव आएंगे, संत वाला और अधिक से अधिक दास वाला, यही दोनों आएंगे। यदि कुछ और भी आएगा तो इसी से प्रधान होकर के आएगा, दास के प्रधान या संत प्रधान रहेगा। इस तरह से फिर उनका जो प्रेम होगा अलग होगा इनका प्रेम, वो वृंदावन की रास्ता यही प्रारंभ से ही पकड़ करके चलता है और ये बैकुंठ की तरफ में अग्रसर। बैकुंठ वाले लोगों के लिए ये सब वृंदावन के भाव बहुत सुदूर है, केवल ब्रज में, वो भी शांत में, दास्य में तो है ही नहीं है, ये झूला इत्यादि बात्सल्य में कुछ कुछ है, पल्ले में झूला रहे हैं, अपने अंगूठे को पैर से पी रहे हैं और मैया झूला रहे हैं। उस समय में कौन आ जाएगा? असुर, गाड़ी वाला और सकतासुर और देवमासुर, तीनावर से ये सब आ जाएंगे। और सखा लोग जब खेल में जाते हैं वनों में तो वो रस्सियां ले जाते हैं डालों पर, उसको झुला करके, और कृष्ण को झुलाते हैं, अपने भी झुलाते हैं। गोपियों का किंतु झूला ये सावन महीना का उन्हीं के लिए, आज यही झूला है। थोड़ा बहुत हमने इसका एक हिंट दिया, आप लोग जो जिस अधिकार में रह करके भगवान का भजन करेंगे और कोई कामना वासना हृदय में नहीं आने, समाज अनर्थों को दूर करके जहाँ तक हो सके हरि नाम आश्रय करेंगे, नाम के प्रभाव से ही हम लोग क्रमशः आगे बढ़ जाएंगे। किंतु इस अवस्था में हम लोगों का श्रवण अधिक होना चाहिए, यदि श्रवण ठीक नहीं हुआ तो कीर्तन भी ठीक नहीं हुआ, भावना भी ठीक नहीं हुआ। इसलिए आदव है श्रवणम तब कीर्तनम तब स्मरण, श्रीमद् भागवत में ही पहले ही पहले स्कंद में पहले ही एकदम बतलाया, सवई पुंसान परो धर्मो जतो भक्ति रद्धो खजे अहे, नहीं सवई पुंसान परो नहीं नहीं धर्म नौ पादे यदि रति हरिकथा में रुचि नहीं है कुछ, और जो तत्ना वो है दूसरे में धर्मापोचित कही तो वो अत्र परमो निमर्शनान सतान वेद्यम वास्तव अत्र प्रयो उन्मूलनम श्रीमद्भागवते नामुनि कृते परैरिस्व सप्तो हृदय अवरुद्यते। इसलिए श्रवण पर अधिक अभी जोर दो, जिनका श्रवण अधिक होगा उसका हरिनाम कीर्तन भी शुद्ध होगा, उसका स्मरण भी शुद्ध होगा, उसका सभी कुछ ठीक होगा। जिनको श्रवण में रुचि नहीं है, नाम में अभी कुछ देखा जाता है, कुछ दिनों के बाद में नाम से भी घट जाएगा। इसलिए श्रवण अच्छी तरह से करो, भगवान का भजन करो, दूसरी कोई भी बात ना है। वंशा कल्प
बहुत देर हो गई है, 12:30 बज गया है। हमने 10 बजे से 12 बजे के लिए कहा किंतु 10 बजे तक कोई आए नहीं। करीब करीब 11:30 बजे आरंभ हुआ, तभी 1 घंटा हुआ है। शाम को हम लोग फिर बैठेंगे, आप सबसे अनुरोध है शाम को आप लोग 5 बजे जरूर आ जाएं, और 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा सब लोग बोलेंगे। जो उन लोगों ने बोला है वो लोग भी समय के अभाव से ठीक नहीं बोल पाए, बहुत संक्षेप में बोला। अब थोड़े से 2-4 बातें, 2-1 बातें मैं केवल प्रारंभ